मुख्य समाचारों में पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जासूसी अधिनियम के संभावित उल्लंघन के लिए जांच। सलमान रश्दी के बुक एजेंट का कहना है कि वो वेंटिलेटर पर हैं। और भारत में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा की स्थिति समस्या बनी हुई है। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। अटॉर्नी जनरल ने 2023 की शुरुआत तक जबरदस्ती नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत दृष्टिकोण पर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। फेडरल अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफर्स ने कल शुक्रवार को मेलबर्न में अपने राज्य, टेरिटरी और न्यूजीलैंड के समकक्षों के साथ यौन उत्पीड़न के लिए आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की जांच के लिए मुलाकात की। उन्होंने जबरदस्ती के नियंत्रण को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांतों का एक परामर्श मसौदा जारी किया, जिसे श्री रेफस ने अपनी तरह का पहला बताया है।
We've agreed on some draft national principles on coercive control, which we're going to be consulting on in coming months, trying to get to some nationally agreed standard on how to deal with this.
Coercive control यानी जबरदस्ती नियंत्रण को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों पर शक्ति और प्रभुत्व बनाने के लिए डिजाइन किए गए अपमानजनक व्यवहार के पैटर्न के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत के कागजात बताते हैं कि एफबीआई ने एक जांच में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मार-ए-लागो एस्टेट से टॉप सीक्रेट के रूप में चिन्हित कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें अमरीकी जासूसी अधिनियम के संभावित उल्लंघन शामिल हैं। फ्लोरिडा के एक न्यायाधीश द्वारा वारंट और संबंधित सामग्री से पता चलता है कि छापे के बाद एजेंट्स ने अपने साथ महत्वपूर्ण मात्रा में वर्गीकृत फाइलें ली। वारंट में दिखाया गया है कि तलाशी आंशिक रूप से संवेदनशील रक्षा दस्तावेजों के अवैध प्रतिधारण से संबंधित अमरीकी जासूसी अधिनियम के उल्लंघन के संदेह पर आधारित थी। राजनीति के सभी पक्षों के राजनेता द्वारा जांच पर प्रतिक्रिया देना जारी है, जिसमें मिशिगन रिपब्लिकन डैन किल्डी भी शामिल हैं।
Well, I think people want everyone to be held accountable to the law, whether you're a president, a past president, or an average citizen. Nobody is above the law, and that's really the reaction that I've had. I think for the most part, people want to see the process play out. I agree with that. I don't want to interfere with what law enforcement is doing. But I think it would be wrong to take the position, because this person is a former president, that we should look the other way when there could be violations of the law. We can't do that. And I don't think people would like to see that happen.
गुरुवार को एक बयान में श्री ट्रंप ने कहा कि उनके वकील पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और सरकार जो कुछ भी चाहती है वो ले सकती थी अगर वो हमारे पास होता तो। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रश्दी वेंटिलेटर पर हैं और गर्दन और पेट में बार बार छुरा घोंपने के कारण उनकी एक आंख खोने की संभावना है। पुलिस ने उनकी स्थिति के बारे में इससे अधिक ब्यौरा नहीं दिया कि वो अभी भी सर्जरी में थे। पुलिस ने हिरासत में लिए संदिग्ध की पहचान न्यूजर्सी के फेयरफील्ड के 24 वर्षीय हादी मटर के रूप में की। श्री रश्दी को 1980 के दशक में अपने चौथे उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में कुछ मुसलमानों का मानना है कि इसमें ईश निंदा वाले अंश शामिल हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकल का कहना है कि रश्दी ने सत्ता के सामने सच बोलने में दशकों बिताए।
Here is an individual who has spent decades speaking truth to power. Someone who's been out there unafraid, despite the threats that have followed him his entire adult life, it seems.
घटना के समय वो व्याख्यान देने वाले थे और उन्हें आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। पिलर पिंटाग्रो जो दर्शकों में थीं जब श्री रश्दी को चाकू मारा गया था, वो कहती हैं कि उन्हें लगा कि मंच पर कूदने वाला व्यक्ति माइक्रोफोन को ठीक करने के लिए था।
I think it was a guy who would, accommodate the microphone, but this guy started to stop him. And it was so fast, so crazy in the moment. we ran to the stage, and a lot of guys came to help him and get the person who attacked him, and it was just incredibly insane because nothing justified an act of violence like this.
1988 के इस उपन्यास को बड़ी मुस्लिम आबादी वाले कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने एक फतवा या धार्मिक आदेश जारी करते हुए उपन्यासकार को मारने का आह्वान किया था। द ह्यूमन राइट्स वॉच अल्बनीसी सरकार से चीनी समकक्ष को ये स्पष्ट करने का आह्वान कर रही है कि मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए ऑस्ट्रेलियन लोगों को रिहा करना दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। आज यानी 13 अगस्त ऑस्ट्रेलियन पत्रकार चेंग लेई को चीन में हिरासत में लिए हुए 2 साल हो गए हैं। SBS न्यूज को दिए एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच के वरिष्ठ चीन शोधकर्ता योकी वांग ने कहा,
2 years after her disappearance and nearly 5 months after a closed-door trial to which the Australian ambassador was denied entry, Australian journalist Cheng Lei is still languishing in a detention centre in Beijing on dubious state secrets charges.
उनकी ये टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया में चीनी राजदूत के कैनबरा में नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करने के कुछ ही दिनों बाद आई है, जहां उन्होंने कहा था कि चीनी कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शुक्रवार को कहा कि भारत लगातार अपने इस रुख पर कायम है कि अगर चीन ने सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग की तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। श्री जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि कमांडर स्तर पर हमारी 15 दौर की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के उन स्थानों से पीछे हटने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां वे बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ जगह हैं जहां वे पीछे नहीं हटे हैं। श्री जयशंकर 2 साल पहले लद्दाख में झड़प के बाद चीन के साथ रिश्तों में तनाव से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमा की स्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है और ये स्थिति खतरनाक स्थिति भी हो सकती है, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 56 रुपए 75 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में टेनिस में निक कैरियोस को ATP मॉन्ट्रियल मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन पोलैंड के ह्यूबर्ट हार्गास ने 7-6, 6-7, 5-7, 6-1 से जीत हासिल की। और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉलर सैम कर को उनके करियर में 4th बार खेल के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 28 वर्षीय मटिल्डास कोच 20 अन्य लोगों के साथ बैलोन डी ओर एक फुटबॉल पुरस्कार की दावेदार हैं। ये पुरस्कार 1956 से हर साल फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। होबार्ट में बरसात, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।